તારીખ 12/9/1991 પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 209 અને 205 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 19 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
सिद्धांत में जब कारण कार्य की कार्य की गुरुदेव चर्चा करते हैं तो स्वयं यह बात प्रसिद्ध होती है कि जिसको मोक्ष प्रिय है मैंने सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है उसको मोक्ष का कारण यानी सुख का कारण जो निर्दोषता और पवित्रता है वही प्रिय है. दोष कहो अवगुण कहो एक ही बात है और निर्दोषता कहो सद्गुण कहो पवित्रता कहो एक ही बात है. तो जिसको दुख नहीं चाहिए उसको दुख का कारण जो अवगुण है दोष है वो भी प्रिय नहीं लगना चाहिए और जिसको मोक्ष चाहिए उसको सुख का कारण मोक्ष मैंने सुख पूरा सुख संपूर्ण सुख उसको उसका कारण रूप जो निर्दोषता है पवित्रता है संपूर्ण के रूप में लगना चाहिए. ये सिद्धांत यहाँ किया है. फिर से पढ़े कि जिसको मोक्ष प्रिय होता है उसका उसको मोक्ष का कारण प्रिय होता है और उसको बंध का कारण प्रिय नहीं होता है. तो यहां से एक बात और भी फलित होती है कि जिसको बंध का कारण प्रिय हो यानी दोष प्रिय हो उसको वास्तव में मोक्ष प्रिय नहीं है. उसको मोक्ष प्रिय नहीं है. ये बात यहां से फलित होती है. कोई ऐसा भी कहे कि नहीं हमें मोक्ष भी चाहिए और हम दोष को भी हमको अप्रिय नहीं लगता है प्रिय लगता है तो ये बात आपस में विरुद्ध है, मेल नहीं खाता है. ऐसा कभी होने होगा नहीं न हो सकता है कि जिसको बंध का कारण मैंने दोष प्रिय हो उसकी मुक्ति हो जाए. तो दोष जिसको प्रिय नहीं है उसको दोषित जीव भी प्रिय नहीं लगते. न दोष करना चाहता है न करवाना चाहता है न कोई करता है तो उसका अनुमोदन भी करना चाहेगा वो. और जो सद्गुण है वो अपने में गुण भरे हैं उसकी खोज करेगा उसकी पहचान करेगा और जो भी जिसमें भी सद्गुण है वो व्यक्ति का वो संग करेगा उसको प्रिय लगेगा. ऐसा बनता है स्वाभाविक रूप से. कौन से राजदेश वाले जहां तक तो मोक्ष जीव है या साधन जीव है और पूर्ण वितराग नहीं हुआ है तो उनको अपने परिवार से ज्यादा ज्ञानी पुरुष के प्रति अनुराग रहना होना ये संभव है. गुरुदेव ने ये बात कही है कि जिसको देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष के प्रति इतना अनुराग नहीं हो यानी इतना ज्यादा अनुराग नहीं हो जो अपने परिवार के प्रति हो अपने संबंधियों के प्रति हो वहां तक उसको सम्यक दर्शन और धर्म का अधिकारी या पात्रता नहीं कहने में आता। ये बात एक सिद्धांत राजचंद्र जी के 416 नंबर के पत्र में ये बात लिखी है कि ज्ञानी की पहचान नहीं होने का जो तीन कारण है, इसमें से ये एक कारण वहां दर्शाया है कि जिसको देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष के प्रति बहुमान समर्पण भक्ति और विशेष अनुराग जिसको कहते हैं, वो अपने परिवार और परिग्रह से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि राग में तो खड़ा ही है। अगर इससे कम है तो उसको वो मोक्ष मार्ग का या सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं। ये राग का भी एक मीटर है, ये नापने नापने राग को अपने आप को हमारा प्रेम और राग कहाँ कितना है, और हम धर्म के या सम्यक दर्शन पाने के लिए अधिकारी हुए हैं कि नहीं। ये बात रखिए, तो राग है तो भी राग की परिस्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन होना, जहां तक राग है वहां तक होना चाहिए। जब होता है तो फिर धर्म का अवकाश है प्राप्त होने का, नहीं होता है तो धर्म प्राप्त करने का कोई अवकाश वहां नहीं है। अभी कहते हैं कि मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख वलन करना वही है, और बहिर्मुख वलन तो बंध का ही कारण है। इसलिए जिसको मोक्ष प्रिय है, ऐसे मोक्षार्थी जीव को अंतर्मुख वलन की ही रुचि होती है, बहिर्मुख ऐसे व्यवहार भावों की उसको रुचि नहीं होती। इतना लंबा रचना पर यहाँ फुल स्टॉप इधर आता है, इसमें अल्प विराम दिया है, कॉमा किया है, फुल स्टॉप इधर आता है। तो क्या कहा गुरुदेव ने, देखिए कि मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख वलन करना वही ही है। क्या कहा, मनुष्य धर्म के क्षेत्र में जाता है, मंदिर में जाता है, उपासना में जाता है, स्वाध्याय मंदिर में जाता है, और अनेक प्रकार के धार्मिक विधि में क्रिया में योगदान करता है, मन से वचन से काया से तन से धन से जो भी है। गुरुदेव ने यहाँ एक कोई दूसरी बात कही है कि आत्म स्वभाव में अंतर्मुख वलन करना वही मोक्ष का कारण है, दूसरा कोई मोक्ष का कारण नहीं है। तो राग है वो आत्म स्वभाव में वलन करने वाला परिणाम नहीं है। जीव के मुख्य परिणाम को अगर हम समझें देखें तो ऐसी बात है कि राग प्रधान रूप से हम लोगों का चलता है, और राग के साथ एक बल भी काम करता है, जोर भी काम करता है, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, विरिपुर का परिणाम कहते हैं। तीसरा जो परिणाम हमारी समझ में आता है वो है कि हम हमारा ज्ञान हमारी बुद्धि वो भी कार्यान्वित होती है हर प्रसंग में। ज्ञान राग और पुरुषार्थ, ये तीन प्रकार के परिणाम जो मुख्य गुण के हैं, ऐसे तो बहुत गुण है लेकिन ये मुख्य गुण के तीन प्रकार के परिणाम तो हमारी समझ में आता है। तो तीनों प्रकार में दूसरी तो सूक्ष्म परिणाम है, समझ में नहीं भी आवे। लेकिन ये तीनों परिणाम बहिर्मुख होवे तो ये मोक्ष का कारण नहीं है। चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम पूजा करें, भक्ति करें, दया दान करें, उपवास करें, यात्रा करें, जब तक कुछ भी करें, लेकिन हमारा राग तो हमेशा बहिर्मुख ही होता है। राग का पंडित की दिशा अंतर्मुखी होती ही नहीं, इसलिए राग से तो कभी धर्म होता ही नहीं, क्योंकि ये तो वितरागता से विरुद्ध परिणाम है, स्पष्टतया स्पष्ट रूप से। परंतु ज्ञान और पुरुषार्थ के जो परिणाम हैं, वो परिणाम भी बहिर्मुख काम करता है, वहां तक मोक्ष का कारण नहीं है। ये बुद्धि का कहने का स्पष्ट तरीका है। जैसे स्वाध्याय में हम इधर हमारा उपयोग को लगाते हैं शास्त्र जी में, और जहां भी ज्ञान और राग प्रवर्तित होता है, पुरुषार्थ इसके साथ ही होता है। ज्ञान और राग बहिर्मुख होवे और पुरुषार्थ अंतर्मुख होवे, ये तो बनता ही नहीं। पुरुषार्थ समझ में आवे के नहीं आवे, लेकिन ये बात साथ में समझ लेना। ज्ञान और राग दो परिणाम तो समझ में आता ही है। पुरुषार्थ अगर ज्ञान और राग दोनों बहिर्मुख है, तो पुरुषार्थ भी बहिर्मुख ही है, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता। तो गुरुदेव का ये कहना है इधर कि मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख वलन करना वही ही है। परिणाम की ये दिशा के विषय में सिद्धांतिक वाद गुरुदेव का निरूपण है। इस विषय में दो ही दिशा है परिणाम के, तीसरी दिशा नहीं है परिणाम को, एक अंतर्मुख और एक बहिर्मुख। हमारा जीव ने अनादि से वर्तमान काल तक, अनंत काल तक धर्म के नाम पर बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन सब बहिर्मुख भाव से, बहिर्मुख वर्ण से ही काम किया है। अगर ऐसा नहीं होता, अंतर्मुख वर्ण होता, तो अभी हमारा इधर स्थान होता। वर्तमान में हम इधर है, ये इस बात का सबूत है कि हमने कभी अंतर्मुख वलन किया नहीं। अंतर्मुख वलन होने से संसार का नाश हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो बहिर्मुख वलन से अभी तक तो करते आए हैं। जब हम ऐसे महापुरुष मिले, ऐसे सदगुरु मिले महान, और जब हमको कहते हैं कि ये बहिर्मुख वलन से ही कुछ काम होने वाला नहीं है, अंतर्मुख वलन से ही मोक्ष होने वाला है, तो हमारा जो भी धार्मिक विषय में परिणाम है, संसार के विषय में तो बहिर्मुख ही परिणाम होता है, व्यापार धंधा दुकान सभी परिणाम बहिर्मुख ही बहिर्मुख है, सब उदय भाव में जाता है। लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, जो भी हम करते हैं इसका ही विचार करेंगे, जो नहीं करते हैं इसका विचार नहीं करें, दूसरे लोगों की क्रिया की टिप्पणी हमें करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो हम जो हमेशा करते हैं उसमें हमारा परिणाम अंतर्मुख होवे, आत्म स्वभाव में लग करके अंतर्मुख होवे, तब ही ये मोक्ष का कारण है। इसके सिवा ये मोक्ष का कारण नहीं है, केवल बंध का कारण है। और बंध के परिणाम में प्रीति करना, ये मोक्ष से अप्रीति करना बराबर है। ये बात भी हमारे लक्ष्य में आनी चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष को कारण तो मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख वलन करना वही है और बहिर्मुख वलन तो बंद का ही कारण है। इसलिए जिसको मोक्ष प्रिय है ऐसा मोक्षार्थी। मोक्षार्थी की क्या परिभाषा है? कि जिसको मोक्ष प्रिय है वो मोक्षार्थी है। मोक्ष मैंने क्या? मोक्ष कहो निज शुद्धता आत्मसिद्धि का। तो परिपूर्ण शुद्धि उसको मोक्ष कहने में आता है। जिसको अपने आत्मा को परिपूर्ण शुद्धि करना हो, ऐसी बात जिसको प्रिय हो, ये विषय जिसको प्रिय हो उसको मोक्षार्थी कहते हैं। अर्थी मैंने जिसको प्रयोजन है पाने का, जैसे विद्यार्थी विद्या की प्राप्ति का प्रयोजन जिसको है उसको क्या कहेंगे कि विद्यार्थी। धन प्राप्ति का जिसको प्रयोजन है उसको क्या कहेंगे कि धनार्थी। और पूर्ण शुद्धता रूप जो मोक्ष है, परिपूर्ण शुद्धि पूर्णता का लक्ष्य जिसको कहते हैं, जिसका जीवन का ध्येय, जिसका जीवन का आदर्श और जिसका जीवन का गोल अंतिम यही लक्ष्य होवे कि हमें पूर्ण शुद्धता चाहिए, तनिक भी हमें अशुद्धता नहीं चाहिए। ऐसा जिस जीव ने अपना जीवन का ध्येय बना लिया उसी को ही मोक्षार्थी कह सकते हैं। बाकी कोई मोक्षार्थी है ही नहीं, भले कुछ भी करते। मोक्ष का जिसको प्रयोजन है जीवन में ये मोक्षार्थी है। मोक्ष का जिसको प्रयोजन पूर्ण शुद्धि का जिसको नहीं है वो मोक्षार्थी नहीं है। गुरुदेव ने ये वाक्य बात किया कि जिसको मोक्ष प्रिय है उसी को हम मोक्षार्थी कहेंगे और जीव को अंतर्मुख वलन की ही रुचि होती है। ऐसे जीव को, मोक्षार्थी जीव को तो अंतर्मुख वलन की ही रुचि होती है, उसको बहिर्मुख वलन की रुचि होती नहीं। मैंने जितने जितने शुभ भाव होते हैं और जितने जितने भी ज्ञान के बहिर्मुख सूक्ष्म वाले परिणाम होते हैं उसकी रुचि मोक्षार्थी जीव को होती नहीं। अगर उसकी रुचि होती है तो वो मोक्षार्थी है ही नहीं, क्योंकि उसको बंधका का यह बहिर्मुख परिणाम उसको प्रिय है। इसलिए जिसको मोक्ष प्रिय है ऐसे मोक्षार्थी जीव को अंतर्मुख वलन की ही रुचि होती है। ये मोक्षार्थी को दूसरा नाम मुमुक्षु की भूमिका कहने में आती है और मुमुक्षु की भूमिका में रुचि ये मुख्य बात है। मुमुक्षु को कितना सूक्ष्म ज्ञान ज्यादा है इस पर कोई मुमुक्षु की कीमत नहीं है। मुमुक्षु कितना रुपये का दान देता है उस पर कोई मुमुक्षु की कीमत नहीं होती है। मुमुक्षु कितनी पूजा भक्ति करता है उस पर कोई मुमुक्षु की कीमत नहीं होती है। कितना शास्त्र पढ़ता है इस पर भी मुमुक्षु की कीमत नहीं होती है। उसकी रुचि कहाँ है उस पर मुमुक्षु की कीमत है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी रुचि कहाँ काम करती है। उनको आत्म स्वभाव की रुचि है या आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है तो रुचि बिना का तो जीव होता ही नहीं है, उसको अनात्म की रुचि होती है और वो मोक्षार्थी नहीं है, ऐसा गुरुदेव का यहाँ अभिप्राय है। फिर से कि ऐसे मोक्षार्थी जीव को अंतर्मुख वलन की ही रुचि होती है। बहिर्मुख ऐसे जो व्यवहार भाव, उसकी रुचि उनको नहीं होती। करता है सो एक बात है, और रुचि होती है वो रुचि पूर्वक करता है वो दूसरी बात है। जैसे हम बीमार हो गए तो दवा खाएंगे, रुचि से खाएंगे क्या? दवाई खानी पड़ती है, लेनी पड़ती है, दवाई लेने की रुचि किसी को नहीं। तो राग होता है, पूजा भक्ति होती है, स्वाध्याय होता है, बैठक परिणाम होता है, वो एक बात है, और इसकी रुचि होनी दूसरी बात है। रुचि उसकी नहीं होनी चाहिए, उसकी अरुचि होनी चाहिए। रुचि तो नहीं होनी चाहिए लेकिन इसकी अरुचि होनी चाहिए, और अंतर्मुख परिणाम की और आत्म स्वभाव की रुचि होनी चाहिए। कुछ भी नहीं होती और का परिणाम है, रुचि भी एक गुण का परिणाम है। उसमें रुचि होती है या अरुचि होती है। जैसे चारित्र गुण का परिणाम में या तो राग होता है या तो द्वेष होता है, दो में से कुछ नहीं होता, ऐसा बनता है कभी है? कैसे रहता है वो बता दो, वो कैसे रहता है? माने सिर्फ तर्क लगाने से क्या फायदा? निरंतर न राग होता है न द्वेष होता है, सब बताओ विचार करें। या तो राग होता है या तो द्वेष होता है, या तो इष्ट लगता है या तो अनिष्ट लगता है, या तो ठीक लगता है या तो ठीक लगता है, कुछ न कुछ तो लगेगा। दो में से एक तो चारित्र गुण में एक तो परिणाम आएगा ही आएगा, संसारी जीव को वितराग की बात दूसरी, वितराग की बात नहीं चलती चर्चा। वैसे रुचि होवे या अरुचि होवे, कुछ तो होवे होवे और हो गई पर तो आप अस्थाने जो बात छे अहीं बैठा छे, सिद्ध भगवान ने अपना माटे या तो जीव को आत्मरुचि होती है या तो जीव को अनात्मरुचि होती ही है। अनादि से अनात्मरुचि चली आ रही है। अब आत्मरुचि होवे तो अपूर्व है, इतनी बात है। अनात्म रुचि तो अनादि से है और है तो चल जा रही है। स्वाध्याय में आत्मा की भी रुचि होती है और स्वाध्याय के राग की भी रुचि होती है। जब स्वाध्याय तो एक बाह्य क्रिया है कि हम शास्त्र जी लेकर के बैठे, पढ़ने भी लगे, तो ये शास्त्र जी लेकर बैठना पढ़ना ये तो सब बाह्य क्रिया है। अभी अंतर क्रिया में रुचि कहाँ काम करती है? हमारे स्वभाव में काम करती है या स्वाध्याय के राग में काम करती है? इसकी तलाश हमारे परिणाम को कर करके हमें इसका निर्णय करना चाहिए। अगर हमारी राग की रुचि है तो वो अनात्म रुचि तो अनादि से राग की रुचि तो चलती है। जैसे कोई एक धंधा बंद करता है दूसरा धंधा चालू करता है, हमने एक धंधा बंद कर दिया दूसरा नया चालू कर दिया तो धंधा ही रह गया। ऐसे राग है वो कभी हम संसार के कार्यों का करे या मंदिर जी में आकर के धार्मिक कार्यों का करें। हमारी राग की रुचि है वो तो उनकी वो रहेगी रहेगी, उसमें क्या फर्क हुआ है? तो फर्क नहीं। जब स्वभाव की रुचि होती है, क्या गुरुदेव कहते हैं तीसरी पंक्ति में देखो कि मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख बदल करना। आत्म स्वभाव की जो रुचि होए, जब तो अनादि की जो राग की रुचि है वो बदली और स्वभाव की रुचि में वलन अंतर को भूख करके हम मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। इसके सिवा मोक्ष में पहुंचने का कोई दूसरा इलाज नहीं है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आपको स्वभाव में चिंतन आत्म स्वभाव के चिंतन साथ वलन होता भी है और नहीं भी होता है, दो प्रकार बनता है। इसमें भी चिंतन का राग होता है और राग का वलन रहता है, रह जाता है। ऐसा भी बनता है और आत्म स्वभाव का वलन होवे उसको चिंतन भी रहता है, जहां तक वितरागता नहीं है। चिंतन एक विकल्प होता है, सूक्ष्म मन में सूक्ष्म जो विकल्प चलता है उसको अपन चिंतन कहते हैं। उस चिंतन का विषय कुछ न कुछ पदार्थ होता है। यहाँ अपन आत्मस्वरूप का चिंतन की बात करेंगे। तो आत्मस्वरूप का चिंतन मुमुक्षु जीव करता है, ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी भी करता है, मोक्षार्थी भी करता है और मोक्षार्थी नहीं है वो भी करता है। तो वो चिंतन के साथ बहिर्मुखता है या आत्मस्वभाव की रुचि है या अंतर्मुखता है या बाह्य पदार्थों की रुचि है, क्या है वो सब बातें अपने परिणामों को तलाश करके जांच करके हमारा निर्णय हमको खुद को करना पड़ेगा, करना चाहिए। चिंतन एक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, तो उसमें बहिर्मुखपना है। लेकिन बलन क्या चीज है? इधर एक बलन शब्द का प्रयोग किया, चलो प्रश्न निकला वो तो अच्छा हुआ। बलन क्या होता है? बलन मैंने एटीट्यूड क्या कहता है अंग्रेजी में, उसको क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। हम चालू भाषा में बलन कहते हैं और उसको अधिक स्पष्ट करें तो अभिप्राय के साथ चलना उसको बलन कहता है। क्या? जिसका जो अभिप्राय होता है उसी के अनुसार उसका बलन होता है, उसको बलन कहते हैं। तो अभिप्राय में अभिप्राय ज्ञान की पर्याय है, जो निर्णय पूर्वक बंधी हुई है उसको अभिप्राय कहते हैं। तो हमारा आत्म स्वभाव का निर्णय हुआ हो तो हमारा वलन आत्म स्वभाव के प्रति रहेगा और हमारा आत्म स्वरूप का स्वभाव का निर्णय नहीं हुआ हो तो हमारा वलन आत्म स्वभाव का नहीं रहेगा, कुछ न कुछ दूसरा रहेगा, अनात्म स्वरूप का, राग का, देह का, संयोग का, पुण्य का, शुभ भाव का, व्यवहार का, कुछ न कुछ रहेगा दूसरा। सब अनात्मा में जाता है, आत्मा में नहीं जाता। एक ओर आत्मा है, दूसरी ओर सारा गांव है। क्या कहते आत्म स्वभाव का जो अभिप्राय है उसके अनुसार बलन है, उस पूर्वक चिंतन हो गए तो वो चिंतन से लाभ होता है। वास्तव में तो बलन से लाभ होता है लेकिन साथ चिंतन है तो चिंतन से लाभ होता है, ऐसा कहने में कोई करना है उसका वर्ण आत्मस्वरूप स्वभाव का निर्णय करने के लिए जिज्ञासा पैदा हो गए ऐसा होता है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न तो निकालते रहना भैया। पढ़िए 205 नंबर का, गुरुदेव के शब्द में उसका उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर तो गुरुदेव के शब्द में है कि निर्णय नहीं होता है उसको क्या होता है निर्णय के पहले। पढ़िए, सिंह चारों ओर फिरते हो और नींद नहीं आवे, क्या सिंह बगल में फिरते हो तो नींद नहीं आवे? जंगल में मुसाफरी करते हो, रात हो गई और सोने के लिए तैयारी कर ली, सामान में से बिस्तर बिछाया और उसमें पता चला कि अभी आवाज आई तो सिंह की त्राड़ थी, अगल बगल में कहीं भी सिंह है और उसको तो मनुष्य की बास आती है, गंध आती है, तो पहुंच जाएगा इधर, मिनटों में पहुंच जाएगा, थोड़ा दूर होगा वो तो छलांग मार के दौड़ता है, मिनटों में आ जाएगा इधर, वो तो गंध आती है कि कहीं भी मनुष्य है। तो जब इसका आवाज सुन लिया जिसको त्राड़ कहते हैं, सिंह का दृष्टांत है, लेकिन हम लोग जंगल में जाते नहीं है, हम तो शहर में रहते हैं, इसे हमने हमको लागू नहीं पड़ता है, असर नहीं होती है। लेकिन मैं एक दूसरा दृष्टांत दे दूं कि अपने बेडरूम में हमने सर्प देख लिया, अरे सर्प की पूंछ देख ली, सर्प नहीं देखा, क्या देखा? सर्प की पूंछ थोड़ी देख ली, आधा फीट, पौने फीट, एक फीट की, बाकी का कोई कपबोर्ड के नीचे या कुछ हमारे सामान के नीचे हो तो फिर नींद आएगी क्या? घर में बेडरूम में सर्प पड़ा है, सर्प क्या बीछू पड़ा है तो भी नींद नहीं आएगी, सर्प की तो क्या बात आएगी, नींद नहीं आएगी। तो गुरुदेव ये समझाते हैं इस बोल में, इस रचना पर, आत्म स्वभाव का निर्णय करने के पहले मुमुक्षु की दशा कैसी होती है तो उसको नींद नहीं आती है। तुम तो खाते हैं पीते हैं ओहैया करके सो जाते हैं, आराम से नींद आ जाती है, तो निर्णय कहां से होगा? चिंता ही नहीं, हमें जन्म मरण की चिंता नहीं है, कहां से आत्म स्वभाव का निर्णय कहां से होगा? हथियारबंद पुलिस या गुंडे कुछ मारने के लिए फिरते हो, या तो पुलिस पकड़ने को आई हो, किसी ने झूठा वारंट लगा दिया हो, या कोई गुंडे फिरते हो भाई इनको तो बाहर निकलने दो, या इसकी खिड़की खोल दो, हम खुलने दो, हम तो घुस जाएंगे, तो सो जाएगा क्या? उसको नींद नहीं है, जैसे वो नींद नहीं आवे वैसे जहां लग तत्व निर्णय नहीं होवे, आत्म तत्व का निर्णय नहीं होवे, वहां लग आत्मार्थी को सुख से नींद नहीं आती। देखिए ये अभिप्राय या निर्णय के पहले क्या हालत होती है, अगर ऐसी हालत हमारी नहीं हुई वहां तक हमको आत्म स्वभाव का निर्णय आएगा ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। हमने कितने धर्मात्मा के धर्म की पूर्व भूमिका के इतिहास को देखा, कुछ गुरुदेव तो अपने अनुभव से ये बात करते हैं, गुरुदेव तो आई भी है इसमें, कुछ बैंसरी के तो प्रत्यक्ष परिचय था और इनके पत्र भी विमुक्ष की भूमिका के पढ़े हैं हमने अभिनंदन ग्रंथ में, सुगानी जी का भी प्रत्यक्ष परिचय था, इनकी भी पूर्व जीवन की भूमिका ये भी प्रसिद्ध हो गई है, इनका जीवन परिचय जो भी वर्तमान में हमें प्रत्यक्ष रूप से मिले इनका जीवंत दृष्टांत है कि उसको सम्यक दर्शन और आत्म शांति मिली इसके पहले इनकी पूर्व गीता मनुष्यों में क्या दशा थी, वो कितने बेचैन थे जब उनको निर्णय हुआ है और अनुभव हुआ है। संसार में भी ये बात होती है कि जिस चीज की जरूरत हो और ये नहीं मिले तो हमारी चिंता और टेंशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। घर में लड़की 25 साल की हुई और उसका कोई संबंध नहीं होता है, फिर 26 साल की हुई, फिर 27 साल की हुई, फिर 28 साल, क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हमें जिस चीज की जरूरत है और नहीं मिलती है तो टेंशन बढ़ता है। अब हम इधर आते हैं आत्मा पाने के लिए, धर्म पाने के लिए, और हमें धर्म नहीं पाया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो हमारी चिंता बड़ी के नहीं बड़ी ये हमें तलाश कर लेना चाहिए कि बड़ी है कि नहीं बड़ी है। खास करके जो पुराने हो गए उनको तो ज्यादा इस बात लागू होती है कि इतने साल हो गए और हमें धर्म की प्राप्ति नहीं हुई और हमें उसका टेंशन भी नहीं आता है, ये बात कितनी उचित है हमारे लिए, इसका विचार करना चाहिए। ये गुरुदेव के वचनामृत को इस बात को उजागर करता है, जागृत करता है कि तुम कहाँ बैठ गया है, कितने शांति में निरात लेकर के से सो जाता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि तेरी जब तुझे नींद नहीं आएगी जब तो तेरा काम होने वाला है, जहां तक तू नींद लेता है वहां तक कोई काम ले होने वाला नहीं है। गुरुदेव के वचनामृत में बगल में ही है, थोड़ा हमारा ध्यान गया था वहां से शुरू करने वाले थे, तो दूसरा देख लिया तो घंटा भर शायद नहीं चलेगा, इसको चला दे। वलन निर्णय पूर्वक होता है आत्मा का, वलन जो होता है आत्मस्वरूप का, अंतर्मुख तत्व है, अंतर तत्व स्वरूप है आत्मा, उसका वलन है, वो अंतर्मुखी वलन है और ये अभिप्राय और निर्णय पूर्वक होता है। उसके पहले नहीं हुए तो उसकी इतनी चिंता होनी चाहिए कि मेरा स्वरूप का अगर मुझे निर्णय ही नहीं है फिर मेरे से आगे क्या होने वाला है। किसी भी काम का पहले तो निर्णय होता है, बाद में वो काम चालू होता है। बिना निर्णय कोई काम होता है क्या? एक काम बताओ जगत में बिना निर्णय होता है। निर्णय पहले करना पड़ता है, काम का प्रारंभ, बाद में कार्य का। रुचि के बाद, रुचि के दो स्टेज है, एक तो आत्मस्वरूप पाने की रुचि और एक निर्णय होने के बाद उत्पन्न हुई रुचि। ऐसे दो स्टेज हैं इनके। जब रुचि के विषय को हम तलाश करें तो हमने तत्वानुशील में एक रुचि का भी प्रकरण लिखा है, सामान्य रुचि और तीव्र रुचि, अनन्य रुचि आत्मस्वरूप की। तो जिसको आत्म गुण चाहिए, सुख चाहिए, पवित्रता चाहिए, उसको गुण धाम, गुण निधान ऐसा अपना आत्मा का जब निर्णय होता है, भाव भाषण होता है कि इतने महान गुण हमारे में पड़े हैं, तो रुचि उतनी बढ़ जाती है कि सम्मुख सम्यक सम्मुखता की रुचि में तो कुछ दिनों में ही सम्यक दर्शन को पा लेता है। इसके पहले जो रुचि होती है वो सामान्य रुचि होती है, जिसमें उतना ही भाव है कि मुझे मेरा आत्मा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल चुका है, अभी इस जगत में मेरे पास जो भी चीज वस्तु पदार्थ है, घर मकान जेवर आबरू कीर्ति देह जो भी कुछ है, वो अनंत बार मिल चुका है, इससे ज्यादा भी अनंत बार मिल चुका है। अब इसकी क्या कीमत है? जैसे आप अभी देखिए कि संसार में पापी प्राणियों के पास करोड़ों और अरबों रुपये होते हैं, किस चीज की क्या कीमत है? आप प्रदेश में विदेश में जाइए तो जो जिसका खान पीन का भी विवेक नहीं है, जो मद्य मदिरा और अखाद्य भक्ष पदार्थ को खाता है, मांस वगैरह, करोड़ों अरबों रुपया होते हैं, मल्टी बिलियन पैसों की कीमत कितनी है? वो चीज तो ऐसे लोगों के पास भी होती है, हेरे गेरे के पास होती है, इसकी क्या कीमत है? कीमत तो इस चीज की है जिससे सुख शांति आत्मा, इससे उन लोगों को भी सुख शांति तो है ही नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो हम अनादि काल से हमें नहीं मिली है, तो अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी आत्म शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, किसी कीमत पे भी हमें हमारी आत्म शांति और आत्मा का सुख ही चाहिए। ऐसी जब भावना होती है उसको रुचि भी कहते हैं, इस भावना को, ये स्वरूप प्राप्ति की भावना है, उसके साथ उसकी रुचि है, उसका रस है, ऐसा कहने में आता है। और उस भावना के कारण उसको आत्मस्वरूप का निर्णय यानी भाव भाषण होता है। तो एकदम रुचि तीव्र होती है, जैसे पतंगा को दीपक की होती है वैसे सकता है। पतंगा दीपक को देखे और दूर रहे वो असंभव है, वो रह ही नहीं सकता, चाहे अपना पूरा जो समर्पण हो जाए, मैंने स्वाहा हो जाता है, जल जाता है शरीर उसका, तो भी वो दूर नहीं रह सकता। ऐसी एक स्वभाव के निर्णय में ऐसी रुचि होती है कि जो अपने से दूर रहने में वो असह्य परिस्थिति महसूस करता है। भावना के काल में निर्णय के पहले सामान्य है और निर्णय के बाद उसको अव्यक्त रुचि गुरुदेव कहते थे, उसको व्यक्त रुचि कहते थे, क्योंकि इस रुचि में उसका पूरा पता नहीं चलता है कि मेरी रुचि कहाँ कितनी है, लेकिन कुदरती होती है भावना के साथ, और निर्णय के साथ तो बराबर पता चलता है मेरी रुचि क्या चीज है, पकड़ सकते हैं अपने रुचि। प्रश्न किस प्रकार का है? दो बात जब है रुचि के विषय में, अब प्रश्न किस प्रकार का है? रुचि के विषय में प्रश्न क्या किया था? हाँ, तो ये भावना के साथ जो रुचि है इसके बाद में आता है, और जो अनन्य रुचि हो निर्णय के बाद इस भूमिका में जो है, वो निर्णय के पहले वाली जो रुचि है वो रुचि भावना के साथ रहनी चाहिए। तो जहां भावना है, जहां रुचि है, वहां रस है। अगर हमारी आत्म प्राप्ति की भावना हो, स्वरूप प्राप्ति की भावना हो, और इस विषय में हमारा रस हो, तो अनात्म पदार्थ में हमारा रस नहीं होना चाहिए, इसके मेल इतना साथ बैठता है। हमारा रस अनात्म पदार्थ में भी होवे, रस के साथ रुचि रहती है हमेशा, तो हमारी रुचि वहां भी होवे और आत्म प्राप्ति में भी हमारी रुचि होवे, दो बात एक साथ बनती नहीं। तो हमारी रुचि आत्मा की नहीं है, वो बात सिद्ध हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। ऐसे नहीं लाया, मैं साथ में कल बताऊंगा आपको। राजचंद्र जी का बहुत बढ़िया वचनामृत है, उसमें ऐसा बात लिखा है कि जीव को व्यवहार व्यवहार मैंने अपने उदय उसकी प्रीति रुचि होवे और इसको परमार्थ की प्राप्ति हो जाए तो तीन काल में बनने वाली चीज ऐसा कभी नहीं बन सकता। ये आत्म शांति और आत्मा इसका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप ही आत्म शांति रूप है। तो आत्मा की रुचि में आत्मा की शांति की जब रुचि होती है तो विरुद्ध पदार्थ की अशांति की रुचि कैसे होगी? अनात्म पदार्थ और इसके माध्यम से होने वाली अशांति उसकी रुचि कैसे होगी? बदल सकती है, बदलती भी है, बदल सकती भी है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि एक दिन में 10 बार ये बदले और 10 बार ये बदले, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अनादि से उसके विरुद्ध प्रकार के विषय में रुचि जा ही नहीं सकती, ऐसी तीव्रता वाली वो चीज इतनी तीव्रता वाली है कि वो जा ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। चिंता में भूख नहीं लगती ऐसा बनता कि नहीं बनता? जब चिंता बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाता है तो नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। तो हमको आत्म शांति या स्वरूप प्राप्ति नहीं है, इसके लिए हमारा और जगह से कम भाव तो हट जावे। पहले भाव तो हट जावे, तीव्र जिज्ञासा तीव्र रुचि के काल में हमारे दूसरे परिणाम तो वहां से खिसक जावे कि हमें कहीं मिला नहीं आता। जहां तक हमको हमारी चीज नहीं मिलेगी हमको कहीं भी रस नहीं आता, ऐसा तो होना चाहिए कम से कम। और ये स्वाभाविक बनता ही है, अगर तीव्र प्यास लगती है तो फिर कोई लड्डू खिलाता है तो नहीं खाता है, नमकीन तो खावे ही कहां से। पानी चाहिए, मैंने पानी ही चाहिए, पानी की जगह लड्डू भी नहीं चलता और भुजिया भी नहीं चलता है। ऐसी ये बात है कि दूसरी चीज फिर इसके अवेजी में चलती नहीं, उसको प्यास कहते हैं, उसको जिज्ञासा कहते हैं, उसको भावना कहते हैं, उसको रुचि कहते हैं। ये सब प्रमुख भूमिका के आनुषंगिक परिणाम है जो एक साथ रहते हैं। ऐसा भी होता है, इसलिए सत्संग का बोध दिया है संतोष कि अगर तुझे जिज्ञासा भावना रुचि नहीं हुई हो तो तू सत्संग में जाना, वहां तुझे तेरे लाभ नुकसान का हिसाब किताब कुछ समझ में आएगा और ज्ञान रुचि का कारण हो जाएगा, तेरी समझ रुचि के कारण हो जाएगी। ज्ञान रुचि का उत्पादक है और रुचि फिर ज्ञान को निर्मल करने में उत्पादक कारण होती है, दूसरे के पूरक है वो। ज्ञान और क्षोभ, बाह्य क्षोभ और ज्ञान में फर्क, ये बात सही है। लेकिन हम यहाँ ऐसी बात लेंगे कि जो ज्ञान अपने रुचि को जगावे उसको मात्र क्षोभ नहीं कहवे, उसको हम ऐसा कहें कि कुछ उसमें मूल्य का आंकना हुआ है, मूल्यांकन हुआ है कि नहीं। हम सत्संग में गए, स्वाध्याय में गए और हमको ये बात समझ में आई कुछ कि हमारा हित कहाँ है, हमारा अहित कैसे होता है, हमारी बुराई हम नहीं करेंगे, हमारी भलाई करने को हम निकले हैं, हमको दुख नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए। तो ऐसी बात समझ करके हमको सही बात का, सत्य बात का मूल्यांकन आ जाएगा तो भी हम दूसरी बातों से हट जाएंगे जो हमारे नुकसान की होगी। इस प्रकार से सत्संग से भी कभी रुचि की जागृति हो जाती है और रुचि वाला हमेशा सत्संग में जाता रहता है। ये भी एक दूसरे के पूरक चीज है। तो उसमें पहला कौन है इसका विचार हमें नहीं करना है। अगर हमको सत्संग प्राप्त है तो हमारी रुचि होनी चाहिए। अगर हमारी रुचि नहीं है तो हमें सत्संग नहीं हो तो कहीं से भी हमें सत्संग जहां भी उपलब्ध हो वहां जाना चाहिए। जब हमारी रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो हमारा वलन बन जाएगा। ऐसी बात तो हमारी जो परिस्थिति है वहां से हम चले आ जाए। आगे क्या कहते हैं दूसरी पारी का टाइम तो हो चुका है। वो कहते हैं कि अंतर्मुख वलन की बराबर रुचि जम जानी चाहिए, फिर भले ही भूमिका अनुसार व्यवहार होता रहे, लेकिन एक दफे अंतर्मुख वलन रूप आत्म तत्व है उसके गिरने के साथ रुचि बराबर जम जानी चाहिए, तो फिर उतना नुकसान व्यवहार में खड़ा रहने से या उदय का कार्य करने में से उतना नुकसान नहीं होगा। वरना तो पूरे के पूरे डूब जाएंगे हम हमारे व्यवहार में, कारोबार में, हमारे उद्योग के संबंध में। और फिर ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पूजा भक्ति स्वाध्याय कर लेंगे तो इससे कुछ हमें फायदा होने वाला